पृष्ठ संख्या 160। जापान का उत्तरोत्तर औद्योगिकरण देश में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बढ़ती हुई जनसंख्या को आजीविका प्रदान करने और उनके रहन-सहन के स्तर को सुधारने के लिए जापान के पास औद्योगिक विकास ही एकमात्र सहारा था। कृषि जीवी वर्ग की संख्या लगभग स्थिर रही। आर्थिक कठिनाई से उद्धार पाने तथा देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए जापान ने मुख्यतया अपने उद्योग एवं वाणिज्य के विपुल विस्तार तथा नौ परिवहन उद्योग की ओर विशिष्ट ध्यान दिया। इसका अभिप्राय था शहरी क्षेत्रों का विकास, जो पहले ही काफी विशाल थे, क्योंकि जापान के उद्योग मुख्यतया टोक्यो, योकोहामा, नागोया, ओसाका, कोबे और अंतरस्थलीय समुद्र के तटों पर ही केंद्रित थे। सन 1931 के बाद मंचूरिया के उद्योग एवं खानों के विकास कार्य की गति बढ़ा दी गई। जापान का औद्योगिकरण अंशतः छोटे छोटे उद्योगों में वृद्धि करके तथा अंशतः बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य को प्रोत्साहित करके किया गया था। भारी उद्योगों में पहले वस्त्र उद्योग में और बाद में इस्पात और मशीनों के निर्माण में प्रगति हुई। लघु उद्योगों में कुछ सीमा तक वहीं की परंपरागत दस्तकारियां सम्मिलित थीं, जैसे रेशमी वस्त्र, वार्निश, पच्चीकारी, मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी के बर्तन आदि। इसके साथ साथ इनमें बिजली के लैंप, साइकिल तथा जुराब, बनियान आदि जैसी कुछ नई वस्तुओं का निर्माण भी सम्मिलित था। कुछ लघु उद्योग बड़े उद्योगों पर आश्रित थे। पहले पहल बड़े उद्योगों का व्यापक रूप से उपयोग सूती वस्त्रों के निर्माण में किया गया। इसने इन्हें निर्यात की प्रमुख वस्तु प्रदान की। निश्चय ही सन 1930 के बाद कच्चे रेशम की कीमतें गिर जाने पर जापान के निर्यात का प्रमुख आधार सूती माल हो गया। इन वस्तुओं का विश्व के बहुत से देशों में निर्यात हुआ, जिनमें चीन, भारत और नीदरलैंड इंडीज प्रमुख थे। इनमें से प्रत्येक देश में उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों से टक्कर लेनी पड़ी और कम से कम प्रथम दो देशों में उन्हें स्थानीय उद्योगों से होड़ करनी पड़ी। इसके बाद इस्पात, पोत निर्माण और मशीनों के उत्पादन द्वारा भारी उद्योगों में प्रगति हुई। सन 1930 के बाद की दो दशाब्दियों में जिस बड़े पैमाने पर युद्ध सामग्री का उत्पादन किया गया, उसमें शांतिकालीन आवश्यकताओं तथा उपयुक्त बाजारों का विशेष ध्यान नहीं रखा गया। बड़े पैमाने के विकास में विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थान प्राप्त करने में वह अंशतः अपने देश की सस्ती मजदूरी पर निर्भर था। लेकिन बाद के वर्षों में उसने अपने उद्योगों में आधुनिकतम यंत्रों के उपयोग, संगठन व्यवस्था के सुधार तथा अधिक कार्यकुशलता की ओर विशेष ध्यान दिया। औद्योगिक विकास के लिए कच्चे माल तथा बाजारों की आवश्यकता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इनके लिए जापान को मुख्यतः अपने देश के बाहर के प्रदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसको अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त कोयला उपलब्ध था। अपनी कई पहाड़ी नदियों से उसने जल विद्युत शक्ति का निर्माण किया। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अधिकांश तांबा स्वयं पैदा कर लेता था, लेकिन खनिज लोहे का लगभग अभाव था और उसे लोहे तथा इस्पात के लिए निर्यात पर निर्भर होना पड़ता था। इसके अलावा पेट्रोल, कपास अपने खादों एवं रासायनिक उद्योगों के लिए आवश्यक कुछ मूल रसायनों तथा अधिकांश तांबे और अन्य धातुओं का भी निर्यात करना पड़ता था। शांति काल में वह ये सभी वस्तुएं बिना किसी कठिनाई के प्राप्त करता रह सकता था, बशर्ते कि वह ठीक कीमत अदा करता रहे, क्योंकि कोई भी देश अच्छे ग्राहक को सामान देने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन यदि उसे माल की कीमत अदा करनी है, तो उसका विदेशी बाजारों की गतिविधियों से परिचित होना आवश्यक है। यहाँ पर उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि जापान में निर्मित ऐसी अनेक वस्तुएं थीं जिन्हें बेचने के लिए जापान को कई देशों के स्थानीय उद्योगों से स्पर्धा करनी पड़ती थी। ऐसे समय में जब शुल्क दर संबंधी बाधाएं बढ़ रही थी तथा सरकारों के बीच पारस्परिक समझौतों के द्वारा आयात एवं निर्यात की सीमा के अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय वस्तु विनिमय व्यापार किया जाता था, जापान को अपने निर्मित माल की खपत के लिए विदेशी बाजार तैयार करने में काफ़ी कठिनाई और कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिसमें उसे बहुत कम ही अवसरों पर पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। जापान के साम्राज्यवादी विस्तार का मुख्य उद्देश्य अपने देश में निर्मित माल की खपत के लिए बाजार ढूंढना था, अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना था। जापान अपने साम्राज्य को आर्थिक दृष्टि से पूर्ण आत्मनिर्भर बनाना चाहता था, जिस पर उसका एक छत्र प्रभुत्व हो। वस्तुतः वह खास जापान को उत्पादन केंद्र बनाना चाहता था, जबकि बृहत्तर पूर्वी एशिया में उसके नए संघ के अन्य देश जापान को कच्चा माल मुहैया कराने तथा जापान में निर्मित माल की खपत के लिए बाजार का काम करेंगे। चीन में विशेषतः मांचुकुओ में कुछ उद्योगों का विकास हुआ, लेकिन सामान्य सभी कारखाने जापान में ही स्थित थे। इन परिस्थितियों में अगर वह ईस्ट इंडीज तथा मलय प्रायद्वीप पर नियंत्रण स्थापित कर ले तो उसे रबर, टीन तथा कुनीन आदि ऐसी वस्तुएं सुलभ हो जाएं जिनकी विश्व में बहुत अधिक मांग थी। उनके साम्राज्य विस्तार के स्वप्न के मूल में केवल आर्थिक महत्वाकांक्षाएं ही कारण न थी, सैनिक नेताओं की महत्वाकांक्षा, प्रभुत्व की इच्छा तथा अपने यश के प्रसार की अभिलाषा भी इसके पीछे प्रबल कारण थी। लेकिन फिर भी आर्थिक महत्वाकांक्षा एक महत्वपूर्ण कारण थी। उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में शक्ति का केंद्रीयकरण तथा राज्य का नियंत्रण, देश की अधिकांश पूंजी का कुछेक परिवारों के हाथों में संकेंद्रित हो जाना तथा आर्थिक जीवन पर राज्य का अधिकाधिक नियंत्रण जापान के आर्थिक जीवन एवं वहां की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं रही। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सरकार ने जिस नीति का अनुसरण किया था, उसी के परिणाम स्वरूप देश में शक्तिशाली तथा धनवान परिवारों को यह प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ था। इस बात का उल्लेख किया जा चुका है कि पैड़ी के आगमन के बाद के काल में देश के आर्थिक परिवर्तन में राज्य का महत्वपूर्ण हाथ था। इस कार्य का बीड़ा उठाने तथा देश की वित्तीय समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने कुछ तत्कालीन व्यापारिक परिवारों का उपयोग किया। इस प्रक्रिया में इन परिवार वर्गों ने अपने अधिकारों में वृद्धि की और इस समय के साथ साथ उनके अधिकार अधिकाधिक बढ़ते गए। उन्होंने सरकार के साथ निकट संपर्क कायम रखा और इनमें दो सबसे बड़े परिवारों ने अपने आप को क्रमशः दो सर्वाधिक प्रभावशाली राजनीतिक दलों से संबद्ध कर लिया। तीन अन्य प्रमुख वर्ग वित्त, उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र में अग्रणी रहे तथा चौथा वर्ग बैंक व्यापार के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रहा। सामूहिक रूप से वे जाइबात्सु नाम से सुविख्यात थे। इनमें से सबसे बड़े वर्ग का नाम मित्सुई था। मित्सुई लोगों के अनुसार फ्यूजीवारा वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी, परंतु तोकुगावा के शासनकाल में वे स्वेच्छा से जनसाधारण में मिल गए और उन्होंने व्यापार एवं महाजन का धंधा संभाला। सन 1860 के बाद मित्सुई लोग भी उन लोगों के साथ सम्मिलित हो गए जो सम्राट के पक्ष में तोकुगावा शासन के विरोधी थे। चूंकि जिस पक्ष का उन्होंने समर्थन किया था वही विजय हुआ, इसलिए सरकार ने, जो उसके मित्रों के नियंत्रण में थी, अपने अधिकांश वित्तीय मामलों का प्रबंध उनके हाथों में सौंप दिया तथा शोगुन और कुछ सामंतों की संपत्ति को उन्हें सस्ते दामों में बेच दिया। आकार की दृष्टि से मित्सुई से छोटे वर्ग का नाम मित्सुविशी था। यह भी तोकुगावा के शासनकाल में विद्यमान था। आरंभ में सन 1870 के बाद की दो दशाब्दियों में इसने नौ परिवहन के द्वारा धन कमाया, लेकिन कालांतर में इसने अन्य कई उद्योगों में भी हाथ डाला। तीसरे वर्ग का नाम था सुमितोमो, जो तोकुगावा काल में तांबे की खानों से तांबा निकालने और उसके शोधन तथा चावल के व्यापार में संलग्न था। इसने धातुओं के व्यापार को जारी रखा और उसके साथ ही रासायनिक पदार्थों, इस्पात और कोयले का कार्य भी शुरू कर दिया। अपने चावल के व्यापार से इसने बैंक व्यापार, नौ परिवहन एवं न्यास संबंधी कार्य शुरू किए। जायबात्सु के चतुर्थ और छोटे वर्ग का नाम यासुदा था। इसने बैंक व्यापार एवं महाजनी के धंधे का विकास किया, जिसे वह शोगुन के शासनकाल से कर रहा था। जायबात्सु को जापान के प्रादेशिक विस्तार से लाभ हुआ और उसने समुद्र पार के अधिकृत प्रदेशों में बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी लगाई। सन 1930 के बाद की दशाब्दी में जापान के मंचूरिया अभियान के पश्चात नए अधिकृत क्षेत्रों के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए कुछ अन्य परिवार वर्गों का उदय हुआ। सरकार ने तोकुगावा काल तथा जापान के आंतरिक परिवर्तन के आरंभिक वर्षों में जनता के प्रति पितृवत व्यवहार के पूर्वादर्श से प्रेरणा पाकर सन 1930 के बाद की दो दशाब्दियों में देश के आर्थिक जीवन में अत्यधिक सक्रिय रूप में भाग लिया। सन 1914 के पश्चात और मुख्यतः 1929 की विश्व जनीन मंदी के पश्चात पश्चिमी देशों की प्रवृत्ति 19वीं शताब्दी की आबाद नीति के विपरीत तथा अधिकाधिक सरकारी निर्देशन एवं नियंत्रण की ओर बढ़ रही थी। जापान भी, जो विश्व की सामान्य लहर और प्रवृत्ति से सहज ही प्रभावित होता रहा है, शीघ्र ही उस दिशा की ओर अग्रसर होने लगा। विशेषतः सन 1931 और 1937 में विदेशों में युद्धों के कारण उस दिशा में प्रगति और अधिक तेज हो गई। सरकार ने देश में उद्योग एवं व्यापार का अधिकाधिक नियंत्रण एवं निर्देशन करना शुरू किया। जैसे जैसे जापान की अर्थव्यवस्था पर युद्ध का भार अधिक होता गया, वैसे वैसे बड़े उद्यमों, खाद्य सामग्री, वस्त्र तथा लाखों नागरिकों की आवश्यकता की वस्तुओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ता गया। जापान पूर्ण रूपेण समग्रवादी तो नहीं बना, लेकिन प्रवृत्ति उसी ओर थी।